वेदांत दर्शन विशेष रूप से श्री कृष्ण को अभिन्न नृत्योपादान स्थापित करता है। जहां पर ईश्वर को ही अभिन्न नृत्योपादान माना जाए उसी का नाम है वेदांत। सभी धर्म अन्य जितने भी विश्व के धर्म है वे ईश्वर को नृत्य कारक को मानते हैं पर ईश्वर को पालन कारक नहीं मानते। ईश्वर देव की रचना करने वाला है यह तो सब कहते हैं। क्रिश्चियनिटी भी कहती है, इस्लाम भी कहता है, अन्य जितने भी धर्म है वे भी कहते हैं कि ईश्वर देव की रचना करने वाला है पर ईश्वर ही जगत के रूप में परिणत है ये कहने वाला समय है। ये कहने वाला वेदांती कि वहां मकड़ी भी वही है, जाल भी वही है और मकड़ी की लार जो मिल रही है जाल बनाने वाली वहां भी वही है, मशीन भी वही है, मैकेनिक भी वही है और मेगा भी वही है, तीन मशीन वही है, एक ही होकर विराजमान ये कहने वाला वेदांत दर्शन ही है। और जहां पर ईश्वर को अभिन्न रूप से पाला माना जाए वहां मत ही वेदांत दर्शन के वेद का परम परम सार रूप होकर के स्थापित हो सकता है। शांति ईश्वर को देवता नृत्य कारण मानता है पर उपादान कारण नहीं मानता है। उपादान कारण प्रकृति है, माया के द्वारा देखने पर प्रकृति जो है वो उसके विकार उत्पन्न होता है, प्रकृति जगत की सृष्टि कर रही है। परंतु वेदांत दर्शन में प्रकृति कोई अलग वस्तु नहीं है, वह ईश्वर का ही स्वरूप होकर के ईश्वर की एक शक्ति होकर के विराजमान। विश्वसित बीज योनि जगत की जीव और योनि उपादान और नृत्य ये दोनों श्री हरि ही एकमात्र विराजमान है। वे नृत्य कारण भी है, उपादान कारण भी वे ही पुरुष है, वे ही प्रकृति होकर के विराजमान क्योंकि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में वे बहिरंगा शक्ति के द्वारा जगत रूप में अपने आप को परिणत करते हुए विराजमान होते हैं। इस प्रकार सत्य परिणाम वाद के रूप में विशेष नहीं बल्कि सत्य परिणाम के रूप में उन्होंने अपने आप को जगत के रूप में परिणत भूतेश वृक्ष वे संपूर्ण पदार्थों में अंगित होकर के विराजमान है। अर्थात वे ही संपूर्ण जगत के जितने भी पदार्थ है उनके रूप में अपने आप को परिणत कर रहे हैं। भगवान के तीन शक्तियां हैं, एक शक्ति है स्वरूप शक्ति, एक शक्ति है प्रकाश शक्ति और एक शक्ति है बहिरंगा शक्ति। यहाँ पर भगवान और शक्ति जो है भगवान का ही स्वरूप है, शक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है, शक्ति कोई भूल नहीं है बल्कि भगवान का स्वरूप ही है। श्री पद समाधि में जी को स्वामी जी नुकर कहते हैं स्वरूप में सार्वत्मक हम शक्ति शब्द ना भी दिए स्वरूप की ही सार्वत्मक जो अवस्था है उसी का नाम शक्ति है। स्वरूप में सार्वत्मक हम शक्ति शब्द ना भी दिए तो भगवान जहां पर अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा नाम धाम लीला प्रकट इनको प्रकट कर रहे हैं वह उनकी स्वरूप शक्ति का परिणाम है। लाल नहीं समझे नहीं समझे ये तीनों श्री प्रभु की स्वरूप शक्ति है, श्री शक्ति है और इनकी शक्ति के द्वारा श्री भगवान अपने लीला को सदा से प्रकटते हुए विराजमान होते हैं। भगवान की दूसरी शक्ति है वो है माया जो बहिरंगा है और उस सवर्णात्मिका माया के द्वारा आपने अपने आप को जगत रूप में परिणत किया। ये सत्य परिणाम है, स्वरूप परिणाम नहीं। सत्य परिणाम होने पर शक्ति के जगत के जो दोष है वे दोष भगवान को देने लगे। ये स्वरूप का परिणाम होगा तो जगत के जितने भी दोष है वे दोष शुभ दुख मोह मुक्ता ये सारे दोष भगवान में आ जाएंगे। परंतु अपनी माया शक्ति के द्वारा वे अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अतः माया के दोष शुभों के दोष भगवान को नहीं लगते। परंतु माया अवश्य शक्ति नहीं है और प्रकट शक्ति नहीं है बल्कि भगवान की ही एक शक्ति होकर के विराजमान और इन दोनों के बीच में एक तीसरी शक्ति है वो तीसरी शक्ति है जीव शक्ति जो सत्ता होकर के विराजमान यदि स्वरूप शक्ति में आवश्यक हो जाए, परिवर्तन के बीच में आवश्यक हो जाए, तो वह लीला प्रकट होकर के श्री युवा प्रकार के श्रीमद वृंदावन में सेवा करते हुए विराजमान हो जाए। और जब तक भगवान की कृपा शक्ति उसे नहीं मिली, यदि वो बाहर पड़ा हुआ है, माया में पड़ा हुआ है, तो माया में पड़ा होकर के वह बंधन को भी प्राप्त करते हुए इस प्रकार जीव रूप तृतीय शक्ति होकर के विराजमान और उसमें ये कभी माया में विराजमान होकर के अपने आप को माया रूप में अनुभव कर रहा है और कभी स्वरूप शक्ति के द्वारा जब इसे चिन्मय देह आदि की प्राप्ति हो जाए उनके द्वारा ये सेवा करते हुए भगवान की सेवा सुख का प्रेम सेवा का भी आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान। श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि अंगी भूतेषु विलक्षणस्य श्री प्रभु इस प्रकार से शक्ति परिणाम के रूप में अपने आप को पंच महाभूतों में अंगित होकर के अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और विलक्षणस्य स्वरूप शक्ति के रूप में आप अलग होकर के भी जैसे पंच महाभूत सबके भीतर विद्यमान भी है और सबसे अलग भी दिख रहे हैं, ऐसे ही प्रभु बहिरंगा शक्ति के रूप में भी विद्यमान है, तटस्था शक्ति के रूप में भी आप विराजमान है, तो विनाश के बाद भक्तवन वाच्यम उन हरि के बिना कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। आज वो जब भी रूपण करेंगे किसी वेदांत का पालन करेंगे कि श्री कृष्ण के अस्तित्व कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, सब वस्तु श्री कृष्णमय होकर के ही विराजमान है, कृष्ण ही शुरू होकर के विराजमान है। तो जहाँ पर सब कुछ कृष्ण होकर के विराजमान है वहाँ पर स्वरूप शक्ति में वे अलग ही स्वरूप शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हुए वे अलग होकर के ही विद्यमान है, तो वो अन्य होते जो विरक्षण सब में विद्यमान भी है और सब अलग होकर के विराजमान है। ज्ञान से केवल वे ज्ञान रूप होकर के विराजमान है और वे ही शासक होकर के होकर के वे ही विराजमान है। माया और जीव इन दोनों के ज्ञान से माने ज्ञान रूप जो जीव है उस जीव तत्व के भी वे स्वामी होकर के विराजमान है और वे माया के भी स्वामी होकर के विराजमान है। जीव और ईश्वर में सत्यनारायण रूप का विद्यमान है, जीव ईश्वर का ही अंश है और सत्यनारायण है, पर अंश होने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी ने कमी हानि लेकर के जैसे किसी मिट्टी के बाहर में से कोई टुकड़ा निकाल करके भी कर दिया हो ऐसे जीव ईश्वर से अलग होकर इस्तेमाल हो तो बात नहीं है, वह ईश्वर में ही ईश्वर का आश्रय लेकर के ही सर्वदर्शन का आवश्यक है, जैसे सूर्य की किरण सूर्य का आश्रय लेकर के ही विराजमान है, वह सूर्य से अत्यंत संतुष्ट रहेंगे, अतः जगत भी भगवान में ही है, जीव भी भगवान में ही है, आश्रय पदार्थ यदि कोई है तो ये आश्रय पदार्थ श्री हरि ही है। आवश्य निरोहित्व यथात जब की आश्रय पर जिसमें ही सृष्टि हो रही है और जिसमें ही जीवती है, जिसमें ही समय की प्राप्ति हो जाएगी वह श्री उद्धव जी नंद बाबा कह रहे हैं, बोले बाबा आप परम परम धन्य है जिनकी नारायण में ऐसी कृष्ण लगी हुई आप जिनको अपना पुत्र कहते समझ रहे हैं वे श्री कृष्ण साक्षात जगत के आश्रय होकर के विराजमान, वे उनमें ही जीव अवस्थित होकर के विराजमान, उनमें ही जगत भी अवस्थित होकर के विराजमान, जगत और जीव उनके ही केवल सत्य होकर के विराजमान है। ज्ञान से तेजाप जीव के भी वे स्वामी है, अब जीव और ईश्वर दोनों यद्यपि सत्यानंद है परंतु जीव सदा कृष्ण दास होकर के ही विराजमान है, ईश्वर सदा शासक होकर के विराजमान है, इनमें शास्त्र शासक का भेद सर्वदा बनाई सत्यानंद होने पर भी जीव जगत की रचना नहीं कर सकता जबकि ईश्वर जगत का रचनाकार होकर के विराजमान, सत्यानंद होने पर भी जीव स्वयं स्वामी नहीं है, वह माया से आपत होता है परंतु माया से कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है और प्रभावित होकर के कई बंधन को वह प्राप्त कर सकता है, परंतु ईश्वर माया से सर्वथा अपरिष्ट होकर के ही विराजमान है, माया का शासक होकर के ही विराजमान है, अतः ज्ञान से तेजा बात ज्ञान रूप जीव का भी स्वामी होकर के विराजमान है एवं प्राण रामकृष्ण ये दोनों प्राण रूप है इनका कोई कार्य नहीं है ये सबके कारण तो सबको योगी की व्याख्या ही यहाँ है कि जो स्वयं शुद्ध भेद शून्य पदार्थ हो उसको ही सत्व कहा जाता है तो पुराण कहने का तात्पर्य है वे सबके कारण है वे स्वयं शुद्ध है उनको शुद्ध करने के लिए जगत की सारी वस्तुओं को बनाने के लिए किसी उपादान की जरूरत पड़ती है पर ईश्वर को बनाने के लिए किसी उपादान की जरूरत नहीं है वह स्वयं शुद्ध है घर बनाना है तो मिट्टी लेनी पड़ेगी वस्त्र बनाना है तो शुद्ध रहना पड़ेगा कार्य के लिए कारण की आवश्यकता होगी पर ईश्वर का कोई भी कारण नहीं है एवं पुराण वे दोनों को दोनों आज पुराण सब कारण होकर के एक हुई विश्वस्त बीजियों ने राम वसुंधरा पुरुष प्रधानम अन्य भूतेश विदस्य ज्ञान से एवं पुराण यस्मिन जन प्राण जीव कार्य क्षण समाविष्ट मनोविष्टम निर्णय कर्माचय मास आदि परामगति ब्रह्म मयोत्म शोधक जी आगे बोले बोले बाबा यस्मिन जनक प्राण जीव काले आप ऐसा विचार मत करना कि राम कृष्ण हमारे यहाँ पर पुत्र रूप में विराजमान है ये भी कर्म के वशीभूत होकर के जैसे जीव आया है जन्म ग्रहण करता है ऐसे ये कर्म के वशीभूत होकर के विराजमान है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो वो है जो कि कर्म बंधन को उल्टा दूर करते हैं ये कर्म के अधीन नहीं है बल्कि यहाँ तो कर्म के भी ठीक होकर के विराजमान प्राणों का त्याग करते समय यदि सब जैसे हटा करके इनके चरणारविंद में स्मरण कर लिया जाए इनका नाम ही ऐसा जो कि मनोविशुद्ध सारे दोषों को दूर कर देता है और सारे दोषों को दूर करके श्री कृष्ण में जहाँ चित्त लगाया जाए वहां पर निर्धन कर्म आ जाए वहां से आती कर्मों के बंधन अपने आप दूर हो जाए तब कर्म बंधन दूर करने का उपाय कोई दूसरा है ही नहीं कर्म बंधन दूर करने का उपाय जो कोई है उसे गोविंद चरणों के ध्यान गोविंद चरणों का नाम का स्मरण ही है चित्त की दर्शन को मार्जित करके यदि कोई परम फल को प्रदान करने वाली वस्तु है तो जिनका नाम ही परम फल को प्रदान करने वाला प्रेमी पदार्थ को प्रदान करने वाला वस्तु स्वरूप की पूर्ति का नाम होने वाला है तो फिर इनका तो स्वयं का तो कहना ही क्या तो निर्हित कर्म है जिनका स्मरण मात्र कर्म के मन के कर्म बंधनों को दूर करने वाला है यदि भक्ति को छोड़ दिया जाए और कर्म बंधन को दूर करने के लिए मन को शुद्ध करने के लिए दूसरे दूसरे उपाय ग्रहण किए जाए तो उनके द्वारा मन शुद्ध नहीं हो सकता है श्री पदकालिक पशु महाराज से संस्कृत में कह रहे हैं कि चित्त को शुद्ध करने का यदि कोई उपाय है तो वो गोविंद भजनों का सदनों का भजन है जैसे भजन के द्वारा शुद्ध होता है ऐसे किसी दूसरे पदार्थ से शुद्ध हो नहीं सकता है जब पार पंकज पलाश विलास हत्या कर्माशय के बनता है तब बंद रिक्त बसे हो मुझे यत्नों के विरुद्ध श्लोकों का स्मरण भली बात जैसे चित्त को शुद्ध करने वाला भगवान नाम है उनके नामों की सेवा है ऐसे कोई दूसरी वस्तु चित्त को शुद्ध करने वाली हो नहीं सकती है जिन्होंने भक्ति को छोटा करके और दूसरे दूसरे साधनों के द्वारा चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न किया तब पता संबंध रिक्त बसे उनके लिए भक्ति चलों की डाली थी तो मानो उनमें बुद्धि है जो बुद्धि से क्यों ये भक्ति चलों की डाली अतः मरण वासुदेव उन सर्व सरल रूप जिनकी सरल ग्रहण करनी चाहिए उन वासुदेव का ही एकमात्र आश्रय ग्रहण करके विराजमान तो निरंतर कर्म आश्रय मात्र जिनका स्मरण मात्र कर्म आश्रय शुद्ध कर देने वाला है और ज्ञानी भी उनके चरणों की सेवा के द्वारा ही परांगतिम ब्रह्ममयोत्वर्ण अर्चनाद मार्ग से अर्धवर्ण होकर के अर्चनाद मार्ग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते हैं क्योंकि सर्वम खनिगम ब्रह्म, जहां विचार मात्र ब्रह्म को प्राप्त करने वाला नहीं है ना, ब्रह्म की निष्ठा ही ज्ञानी को ब्रह्म साधित कराने वाली होती है। जैसे एवं दुखम, यह ज्ञान कभी भी दुख देने वाला नहीं होता, अहम तो भी यह ज्ञान ही दुख देने वाला होता है। एवं दुखम यदि यही ज्ञान दुख देने वाला होता तो कोई भी संसार में डॉक्टर ही पढ़ता ही नहीं, तो डॉक्टरों को तो केवल दुखी दुख के बच्चे में पढ़ना पड़ता है, रोगी रोग के बच्चे में पढ़ना पड़ता है। परंतु एवं दुखम या पढ़ने पर भी या ज्ञान होने पर भी, जैसे कोई भी डॉक्टर दुखी नहीं होता, दुखी होता है जब यह अनुभव करे कि मैं दुखी हूँ, अहम रोगी अहम दुखी, तब जाके उसको दुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इधम नंबन इधम नंबन कह रहे थे जब तक ज्ञानी भी उपाधि को हटा करके वस्तु में को अपनाए नहीं, वस्तु में स्वयं अपने हो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त न करे, तब तक ज्ञानी को भी ब्रह्म साहित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इस उपाधि न उपाय कोई है, संसार नाश का एक उपाय है, तो सर्वम खनिगम ब्रह्म जी कहने से उपाधि का नाश नहीं होगा। श्री गोविंद नाम का आश्रय ग्रहण करने पर ही भाई गोविंद भाई गोविंद गोविंद भाई मूल मते, यह कहने पर ही गोविंद का आश्रय लेने पर ही उसकी उपाधि का नाश है। तो ज्ञान के लिए भी भक्ति की अनिवार्यता है, बिना भक्ति के ज्ञानी को भी ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः ज्ञानी को भी भगवत स्वरूप का चिंतन करना पड़ता है, उसे संगत समाधि भी लगानी पड़ती है, उसे नाम का आश्रय भी ग्रहण करना पड़ता है, और उसे भक्ति ग्रंथों का भागवतारी का आश्रय भक्ति का आश्रय लेकर के भी विराजमान होना पड़ता है, तब जाकर के उसकी उपाधि का खंडन होता है। तो उपाधि दूर करने के लिए तत्व को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है। तो पराम गति ब्रह्ममय जो वर्तमान मार्ग से ब्रह्म साहित्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, वे भी श्री कृष्ण में ही चित्त लगा करके उस भक्ति को प्राप्त करते हैं। बाबा आपके जो चित्र है वो सामान्य नहीं है, आपके पुत्र तो आपका ब्रह्म है, और उस ब्रह्म में आपकी ऐसी प्रीति लगा रखी है, आप सभी का भागीदारी और ऐसे तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतौ नारायणे कारण मध्यभूतौ भावं विरक्तां मित्राणां महात्मनः। कोई श्री कृष्ण में आप अपने भाव को लगाओ, कृष्ण में आपकी प्रीति लगी है तो फिर आपको बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपके लिए कोई भी वस्तु अभी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वस्तु शक्ति को कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जानी वस्तु शक्ति जो है वह प्रभाव डालेगी। कृष्ण चिन्मय है, कृष्ण ब्रह्म है, और यदि कृष्ण का आराधन किया जाएगा तो संसार बंधन की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी, कृष्ण की प्रीति करने पर संसार बंधन की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। आप यह भी कह सकता है कि जब सर्वम खनिगम ब्रह्म है तो पत्नी से पुत्र से जो प्रेम किया जा रहा है वो क्या ब्रह्म से प्रेम किया जा रहा है? यही अच्छा है कि जब सभी ब्रह्म श्री प्रभु ही अपने आप को स्वरूप में परिणत कर रहे हैं तो जगत की जो प्रीति की जा रही है वह भी तो कहीं ना कहीं भगवान से ही प्रीति हुई। बोले ठीक है, कहीं सिद्धांत में जाकर के भगवान की प्रीति होगी, पर वह स्वरूप में प्रीति नहीं है, भगवान की भयंकर शक्ति से ही वह प्रीति है। जब तक स्वरूप शक्ति से प्रीति नहीं होगी तब तक भगवत सरकार की प्राप्ति नहीं होगी। जगत है पर जगत जगत ये तो ब्रह्म है परम खंड ब्रह्म, पर जगत परिणाम है भगवान की तुलनात्मक शक्ति का, पर वृंदावन की वैसे जो प्रीति की जाएगी वृंदावन की है तुलनात्मक शक्ति का परिणाम नहीं, ये कौन शक्ति का परिणाम है? पत्नी और पुत्र ये माया शक्ति के परिणाम है, पर श्री कृष्ण कृष्ण परिणाम कृष्ण नाम ये माया शक्ति का परिणाम नहीं है, वो स्वरूप शक्ति का परिणाम है। संगनी शक्ति का स्वरूप है श्री वृंदावन धाम। अतः वृंदावन की स्थिति करने पर वृंदावन की रक्षा मोह करने पर ब्रजवासियों से मोह करने पर वृंदावन की रखा पकाओं से मोह करने पर प्रीति करने पर स्वरूप शक्ति की तुम्हारात्मा हो रही है, वह तुम्हारात्मा का बहिरंगा शक्ति की तुम्हारात्मा हो रही है। स्वरूप शक्ति ही बंधन को दूर करने वाली है, तुम्हारात्मा शक्ति बंधन को दूर करने वाली नहीं है, वह बंधन को दूर करने का केवल द्वार मात्र शरीर मेरा है तो शरीर के माध्यम से एक साधन के रूप में इस शरीर के माध्यम से भगवत भजन किया जाएगा। वह इस शरीर में ही चिन्मय शरीर को स्थापित करने का कहीं एक द्वार मात्र है, परंतु दुख को तैयारी को प्राप्त करने वाली वस्तु है वह तो चिन्मय शरीर ही है, अंदर चिंतित देह ही है। तो अंदर चिंतित देह के द्वारा भगवत अगर आपने भले श्री कृष्ण को पुत्र रूप में पूजन किया, पुत्र रूप में स्नेह किया, परंतु स्वरूप शक्ति के प्रभाव से आपके प्रसाबंधन को दूर रहेंगे। बाबा तो वैसे प्रसाबंधन लेंगे, बाबा तो होगा ही कहा परंतु समझाने के लिए कह सकते हैं जो उदय कह रहे हैं कि कृपा विष्ण जुमिनो सुपुत्र बोले बाबा आपके लिए कौन सा सुपुत्र बाकी रहेगा, क्योंकि आपको स्वरूप शक्ति के भी आभार परमात्मा